हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हिंदी में बोलेंगे ना, तो जय राधा माधव के बजाय एक दूसरा भजन गाएंगे, क्योंकि दो भजन गाने के लिए समय शायद नहीं होगा। तुलसी महारानी के बारे में है। रोज सुबह तो तुलसी कीर्तन तो करते ही हैं, और ये तुलसी आरती है। आपने सुना है ये? ठीक है। नमो नमो तुलसी महारानी, वृंदे महारानी। नमो नमः नमो रे नमो रे मैया नमो महारान। नमो रे नमो रे मैया नमो नारायणी। नमो नमः तुलसी महारानी, वृंदे महारानी। नमो नमः जाको दरशे परशे अघनाशे जा जाको दरशे परशे अघनाशे महिमा वेद पुराणे वखाने। महिमा वेद पुराणे वखाने नमो नमः तुलसी महारानी, वृंदे महारानी। नमो नमः नमो रे नमो रे मैया नमो नारायणी। नमो
नमो नमः तुलसी महारानी वृंद महारानी नमो नमः जाको पात्र मंजरी कोमल जाको पात्र मंजरी कोमल श्रीपति चरण कमले लपटाने श्रीपति चरण कमल लपटाने नमो नमः तुलसी महारानी वृंदे महारानी नमो नमः धन्य तुलसी मैया पुराण तपतिये धन्य तुलसी मैया पुराण तपतिये श्री शाल ब्रह्मा महापटरानी श्री शाल ब्रह्मा महापटरानी नमो नमः तुलसी महारानी वृंदे महारानी नमो नमः नमो रे मैया नमो नारायणी नमो नमः तुलसी महारानी वृंदे महारानी नमो नमः दीप नैवेद्य आरति धूप दीप नैवेद्य आरति किए वरखा वरखाने भूलना किए वरखा वरखाने नमो नमः तुलसी महारानी वृंदे महारानी नमो नमः छपन भोग छत्तीस व्यंजन छपन भोग छत्तीस व्यंजन बिना तुलसी प्रभु एक नहीं माने बिना तुलसी प्रभु एक नहीं माने नमो नमः तुलसी महारानी वृंदे महारानी नमो नमः नमो रे मैया नमो नारायणी नमो नमः तुलसी महारानी वृंदे महारानी नमो नमः शिव शुक नारद और ब्रह्मादि को शिव शुक नारद और ब्रह्मादि को Thank you. ज्ञानी दूरत फिरत महा मुनि ज्ञानी नमो नमः तुलसी महारानी वृंदे महारानी नमो नमः चंद्रशेखर मैया तेरा यश गावे चंद्रशेखर मैया तेरा यश गावे भक्ति दान दीजिए महारानी भक्ति दान दीजिए महारानी नमो नमः तुलसी महारानी वृंदे महारानी नमो नमः नमो रे नमो रे मैया नमो नारायणी नमो नमः तुलसी महारानी वृंदे महारानी नमो नमः जय तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी जय वृंदे देवी जय वृंदे देवी वृंदे देवी जय वृंदे देवी
श्रीमती तुलसी महारानी की जय श्री वृंदे देवी की जय श्रील प्रभुपाद की जय हरे कृष्णा भजन अच्छा लगा आपको अच्छा ऐसा करेंगे थोड़े भक्त बाहर खड़े हैं आप में से थोड़े भक्त यहाँ आ जाइए और कोई यहाँ भी बैठना चाहते हैं तो कोई ऐसा नहीं है यहाँ बैठ जाए हम बैठ जाए थोड़ा आएंगे कोई ऊपर तो दो चार भक्त हैं वो भी आ जाएं आ जाओ कोई भक्त नहीं बैठ जाओ आ जाओ इधर बैठ जाओ यहाँ सामने आ जाए ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारिणं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्य वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् आराध्य भगवान् व्रजेशतनयस् तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधो वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरहन परः हे कृष्ण करुणा सिंधो बंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा तो आपने अनुमान लगाई होगा कि आज का विषय क्या है लगाया अनुमान क्या विषय होगा आज का तुलसी महारानी भक्तों के लिए महत्वपूर्ण है ना बहुत महत्वपूर्ण विषय है हम सब के लिए हम तो हर रोज तुलसी महारानी की पूजा करते हैं मंदिरों में घरों में भी तुलसी महारानी का गुणगान करते हैं और भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा तो तुलसी महारानी के बिना हो ही नहीं सकती आपने यहाँ सुन ही लिया 56 भोग 36 व्यंजन बिना तुलसी प्रभु एक नहीं मानी तो हमारे भक्ति के पथ में तुलसी देवी की सेवा बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवत गीता में जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति पहरितम अर्शनामी प्रयतात्मनः, तो वो कहते हैं कि यदि कोई भक्ति भाव से बड़े प्रेम से मुझे थोड़ा सा जल, एक छोटा सा फूल, एक फल या एक पत्र मुझे अर्पण करे तो मैं बड़े आनंद से उसे स्वीकार करता हूँ। तो पत्र का मतलब क्या है, किस तरह का पत्र? विशेष करके तुलसी का दल, तुलसी दल। तो भगवान श्री कृष्ण तुलसी दल, तुलसी मंजरी आदि से बहुत प्रेम करते हैं। जब हम उनको ये अर्पण करते हैं तो वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भक्त का आनंद किस चीज में है। संसार के लोग आनंद लेते हैं सिनेमा देखने में, टीवी देखने में, बाहर होटलों में जाके खाने में और तरह तरह की चीजों में आनंद लेते हैं। भक्तों का आनंद किस चीज, किन चीजों में है? हम कीर्तन करते हैं, भजन गाते हैं, कितना आनंद आता है, कथा सुनते हैं, कुछ श्रवण कीर्तन करते हैं। साथ साथ में प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्ति भाव से जब हम तुलसी दल चंदन के साथ श्री कृष्ण के चरण कमलों में अर्पण करते हैं तो इससे अधिक कोई भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए कोई बात नहीं है। तो भक्तों का आनंद इसी में है, तुलसी दल और चंदन अर्पण करना भगवान को। कितना आसान है भक्त बनना, कोई मुश्किल नहीं है, कठिन बात नहीं है। नहीं, भगवान को प्रसन्न करना कोई कठिन बात है। भगवान कहते हैं बस इतना ही मुझे चाहिए, थोड़ा सा प्रेम, एक तुलसी दल और थोड़ा सा चंदन, इतना ही अर्पण करेंगे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। बल्कि इतना प्रसन्न होते हैं भगवान, इतने ऋणी हो जाते हैं अपने भक्त के कि वो अपने आप को ही बेच डालते हैं ऐसे भक्त के प्रति। अद्वैत आचार्य का नाम तो आप सबने सुना है। 500 साल पहले जब उन्होंने समाज में परिस्थिति को देखा तो बड़े दुखी हो गए। वहाँ कोई कृष्ण भक्त नहीं थे, विरला ही कहीं इधर उधर कृष्ण भक्त मिल जाते, नहीं तो अधिकतर लोग या तो नास्तिक थे या कर्मकांडी थे। मतलब भगवान की भक्ति करने वाला व्यक्ति कहीं नहीं मिलता। तो अद्वैत आचार्य सोच रहे थे कि ऐसी विकट परिस्थिति है और इसको सुलझाना है, इसको ठीक करना है तो केवल भगवान ही कर सकते हैं, स्वयं भगवान को ही अवतीर्ण होना चाहिए, अन्यथा और कोई उपाय इसके लिए नहीं है। तो बड़े तीव्रता से, भक्ति भावना से उन्होंने भगवान को पुकारा और पुकारते रहे प्रतिदिन। और विशेष करके वो अपने शालिग्राम शिला को तुलसी दल और गंगा जल अर्पण करते रहे रोज, और एक मंत्र के उच्चारण के साथ जो कि पुराणों में पाया जाता है, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणिते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। इसका मतलब है कि तुलसी दल मात्रेण, मात्र तुलसी दल से और थोड़ा सा जल, गंगा जल, इतना ही बस जो हमारी मुट्ठी में आ गया उतना ही, दो चार बूंद गंगा जी का जल यदि श्री कृष्ण को भक्ति भाव से अर्पण किया जाए तो क्या होता है, विक्रीणिते स्वम आत्मानं भक्तेभ्यः। भक्तेभ्यः मतलब भक्तों के हवाले भगवान अपने आप को प्रदान कर देते, वो बेच डालते, विक्रीणिते। तो भगवान को खरीदना है तो ज्यादा कीमत नहीं लगती। आजकल एक कमीज खरीदना है तो कितना खर्च करना पड़ता है, छोटी सी चीज बाजार से खरीदनी पड़ती है तो कितनी कितनी महंगाई है आजकल। परंतु भगवान को खरीदना है तो क्या कीमत है, तुलसी दल और थोड़ा सा जल और साथ में क्या, चंदन, ठीक है, और प्रेम चाहिए, नहीं तो भगवान नहीं आएंगे। केवल तुलसी रहे लेकिन प्रेम से अर्पण नहीं करे तो भगवान नहीं आएंगे। प्रेम की कोई कीमत नहीं है, बाजार में नहीं खरीदी जा सकती। तो ये है भगवान का प्रेम तुलसी के प्रति, कि भगवान इतने ऋणी हो जाते हैं भक्त के प्रति कि अपने आप को ही बेच डालते हैं। बल्कि लक्ष्मी देवी भी वैकुंठ में बैठे बैठे सोचती हैं कि तुलसी महारानी कितनी महान है और कितनी भाग्यशाली है कि कितने सारे वैष्णव सारे अनंत कोटि ब्रह्मांडों में हैं, भौतिक सृष्टि में भी और आध्यात्मिक जगत में भी अनगिनत भक्त हैं, और ये सारे भक्त भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में तुलसी दल और चंदन अर्पण करते हैं। तो तुलसी महारानी स्थित रहती हैं भगवान के चरण कमलों में, लेकिन लक्ष्मी देवी सोचती हैं मेरा ऐसे सौभाग्य नहीं है, मैं तो भगवान के चरण कमलों में रहती हूँ, मैं भगवान के चरणों की मालिश तो करती हूँ, लेकिन मेरे इतने सारे उपासक हैं, वो मुझे बुलाते रहते हैं, उनको धन चाहिए धन चाहिए, तो इसलिए उनको संतुष्ट करने के लिए मुझे भगवान के चरण कमलों को छोड़ के जाना पड़ता है। परंतु तुलसी देवी कभी भगवान के चरण कमलों को छोड़ के नहीं जाती। इसलिए लक्ष्मी देवी सोच रही हैं कि मेरे से ज्यादा सौभाग्यशाली तुलसी महारानी है। साथ साथ में भक्ति रसामृत सिंधु में श्रीला प्रभुपाद जी बताते हैं कि बिल्वा मंगल ठाकुर प्रार्थना करते हैं तुलसी महारानी से कि हे तुलसी महारानी, हम सब भक्तों का गंतव्य स्थान, हमारा जो उद्देश्य है वो है भगवान कृष्ण के चरण कमल। अब आप हमेशा वहां स्थित रहते हो तो आपको कुछ अंदर की बातें पता होंगी भगवान के चरण कमलों के बारे में, कुछ रहस्य आपको अवश्य पता होगा, कुछ अधिक ज्ञान या जानकारी हमें भी दीजिए कि भगवान के चरण कमल कैसे हैं, क्या स्वाद है, और हम भी वहां कैसे पहुंच सकते हैं, और आपकी तरह हम भी वहां कैसे स्थित हो सकते हैं। तो ऐसे भक्त तुलसी महारानी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। तो है ना बहुत महत्वपूर्ण स्थान तुलसी महारानी का। तुलसी को अर्पण किया जाता है केवल भगवान कृष्ण को, उनके चरण कमलों में, या तो फिर एक तुलसी दल और तुलसी मंजरों की माला बना के उनको गले में पहनाई जाती है। परंतु ऐसे तुलसी का हार या तो तुलसी के दल चरणों में अर्पण करना, ये और किसी के लिए नहीं है, केवल भगवान के लिए। यहाँ तक कि श्रीमती राधा रानी को भी नहीं अर्पण किया जाता है। हाँ, ऐसे हम कर सकते हैं, जो भगवान को अर्पण करने के लिए एक तुलसी का हार हो वो श्रीमती राधा रानी के हाथों में रखा जाए, कर कमलों में रखा जा सकता है, ताकि श्रीमती राधा रानी कृष्ण को अर्पण करें, ये किया जा सकता है। परंतु श्रीमती राधा रानी को पहनाया नहीं जा सकता। पहनाया तब जा सकता है जब वो कृष्ण प्रसाद हो। तो हम लोग भी तुलसी माला पहन सकते हैं, फूल तुलसी दल की माला, यदि वो कृष्ण का महाप्रसाद हो तब, निर्माल्य भगवान का। इसलिए तुलसी महारानी और कहीं और किसी की सेवा में नहीं इस्तेमाल की जा सकती हैं। कई बार भक्त या कोई लोग पूछते हैं कि तुलसी महारानी के कितने अच्छे गुण हैं, खांसी के लिए बीमारी ठीक हो जाती है, सर्दी की बीमारी ठीक हो जाती है ना, तो ऐसे दवाइयां बनाई जा सकती हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने मना किया है कि नहीं, तुलसी का महत्व हमारे लिए इसलिए नहीं है कि इसमें औषधि गुण बहुत हैं, नहीं, तुलसी का महत्व हमारे लिए ये है कि वो कृष्ण के लिए बहुत प्रिय है, इसलिए हम कृष्ण या तुलसी महारानी की सेवा करते हैं। पुराणों में शिवजी पार्वती देवी से कहते हैं, आराधना नाम सर्वेशां विष्णु आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम। वो कहते हैं कि हे देवी, हे दुर्गा, इस सृष्टि में भगवान विष्णु या कृष्ण की जो उपासना है वो सर्वश्रेष्ठ है। परंतु भगवान विष्णु के उपासना से भी और श्रेष्ठ उनकी सेवा है जो भगवान विष्णु से संबंधित हैं, विशेष करके जो उनके भक्त हैं, उनका धाम है इत्यादि। तदीय वस्तु, तदीय मतलब जो संबंधित है। तो भगवान से संबंधित कौन वस्तुएं हैं? जैसे वैष्णव है, गंगा है, यमुना है, तुलसी है, गाय है, भगवान का धाम है, ये सब तदीय वस्तु माने जाते हैं। तो इनकी सेवा भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में साधन भक्ति के 64 अंगों का वर्णन जब करते हैं तो उनमें से एक अंग तदीय सेवनम कहते हैं। तदीय सेवनम मतलब उन चीजों की सेवा करना जो भगवान के संबंधित हैं, जिन चीजों का उल्लेख हमने अभी अभी किया। तो इस तरह से तुलसी महारानी की सेवा भी भक्ति ही है, भक्ति का बल्कि एक महत्वपूर्ण अंग है। इतना महत्वपूर्ण है कि हम ये रोज करते हैं। यदि कोई कहे कि भक्ति मतलब केवल भगवान कृष्ण की सेवा करना, तो ये गलत है, क्योंकि कृष्ण मतलब कृष्ण से संबंधित जो भी हैं वो भी कृष्ण हैं। इस दृष्टि से कि उनका संबंध बहुत गहरा है कृष्ण के साथ में, इसलिए हम रोज तुलसी महारानी की सेवा करते हैं। तो हर एक मंदिर में तो तुलसी महारानी होती ही हैं, साथ साथ बंबई जैसे शहर में भी हर एक घर में, कम से कम भक्तों के घर में तो तुलसी महारानी का होना आवश्यक है। आप सबके घरों में तुलसी महारानी हैं? जिनके घर में नहीं है, आज से ही आप तुलसी महारानी को घर में लाइए और रोज तुलसी महारानी की सेवा करिए, यदि आप भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं तो। चाहते हैं ना? तो अवश्य घर में तुलसी की सेवा होनी चाहिए। ऐसे बताया जाता है कि तुलसी महारानी का दर्शन करने मात्र से बहुत सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी महारानी को प्रणाम करने से हमारी बीमारियां, कष्ट भी दूर हो जाते हैं। और जो व्यक्ति तुलसी महारानी के बीज को बोता है तो उसके हृदय में भक्ति, वो भक्त बन जाता है। और यदि ऐसे तुलसी के दल भगवान कृष्ण के चरण कमलों में अर्पण किए जाएं भक्ति भाव से, तो कृष्ण प्रेम का उदय शीघ्र ही हो जाता है। तो इसलिए हमें तुलसी महारानी की सेवा करनी चाहिए। एक बार द्वारका में भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन था, तो जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा था। तो कभी कभी भारत में ऐसी एक प्रथा है कि कोई बहुत बड़ा व्यक्ति होता है तो कोई उसके जन्मदिन के ऊपर तुलाभार महोत्सव मनाया जाता है। अब जानते हैं क्या है? क्या है ये, कोई बताइए? एक तराजू में वो आदमी बैठ जाता है और दूसरी ओर जो है बहुत मूल्यवान वस्तुएं जैसे सोना है, चांदी है इत्यादि, वो रखा जाता है। और जितना उसका वजन है उतना ही वजन का जो सोना चांदी जो भी कुछ है वो दान में देता है। तो भगवान कृष्ण को भी तराजू पर बैठाया गया और वो डाले जा रहे हैं सोना चांदी हीरे मोती वगैरह वगैरह, लेकिन बस भगवान श्री कृष्ण नीचे ही नीचे, वो तो नीचे नहीं आ रहा जो सोना चांदी का। तो क्या किया जाए? हालांकि द्वारका में कोई ऐश्वर्य की कमी नहीं है, फिर भी सभी लोग सोच रहे थे क्या किया जाए। फिर वहां नारद मुनि आए। नारद मुनि तो बड़े बुद्धिमान है ना, तो नारद मुनि ने कहा बहुत आसान तरीका है तराजू को संतुलित करने के लिए, एक तुलसी दल यहाँ रख दीजिए। तो एक तुलसी दल रखा गया, बराबर हो गया सब ठीक। तात्पर्य क्या है कि भगवान इतना सोना चांदी हीरे मोती से इतना प्रसन्न नहीं होते जितना कि एक तुलसी दल से। तो यदि किसी के पास कोई धन नहीं हो, कोई बहुत गरीब हो, तो वो भी भगवान की भक्ति अच्छी तरह से कर सकता है। और कोई धनी हो वो भी कर सकता है। जब पत्रम पुष्पम फलम तोयम की बात आती है तो भगवान कहना चाहते हैं कि किसी के पास कुछ और वस्तु हो ही नहीं, फिर भी वो भक्ति कर सकता है और उसे करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत धनी व्यक्ति हो वो सोचे मैं केवल पत्र पुष्प जल फल अर्पण करूंगा और धन मेरे लिए रखूंगा, नहीं ऐसा नहीं। जितना हमारे पास है यथाशक्ति हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, लेकिन हमारे पास कम हो या ज्यादा हो जो भी है वो कृष्ण का ही है और कृष्ण को अर्पण करना चाहिए बड़े भक्ति भाव से। ये बात है। जब गोवर्धन पूजा चल रही थी वृंदावन में और भगवान के सामने गोवर्धन जी के सामने भोग रखा गया, तो आप जानते हैं कि जितना भी भोग वो रखते थे ब्रजवासी, गोवर्धन क्या कहते थे, अनियोर अनियोर अनियोर, मतलब और चाहिए और चाहिए। तो वो संतुष्ट हुए ही नहीं, बेचारे ब्रजवासी थक गए, इतना पका पका के ला रहे थे एक गांव से दूसरे गांव से, और ये खाए जा रहे हैं। और रोटियों के पर्वत थे और चावल के पर्वत, सब्जियों के पर्वत, पर्वत के पर्वत खाए जा रहे हैं। तो अब क्या किया जाए। फिर एक बहुत बुजुर्ग थे, बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने देखा हाँ तुलसी पत्ता डाल दिया, फिर गोवर्धन महाराज गिरिराज महाराज संतुष्ट हो गए। तो ये है तुलसी का लाभ। तुलसी महारानी की सेवा करने से कितना लाभ होता है स्पर्श मात्र से, इसके बारे में एक छोटी सी पौराणिक कथा आपको हम सुनाएंगे। हरि भक्ति सुधोदय में ये कथा आती है कि एक बार एक ब्राह्मण था, वैसे केवल नाम के लिए ब्राह्मण था, कोई ब्राह्मण के गुण उसमें नहीं थे। और वो कभी ऐसे कोई व्यवसाय करता था, कुछ जंगल से जाके कुछ ऐसे पौधे वगैरह लेके आता था, बाजार में बेचता था और ऐसे उसका जीवन यापन होता था, जीविका का साधन ऐसे ही था उसका। तो एक बार जब वो वन में गया तो उसने देखा कि अरे ये कौन से एक बहुत ही प्रकाशमान, यहाँ कोई हरियाली दिखाई दे रही है, ये घास कौन सा है, ये तो बड़ा आकर्षक लग रहा है। तो दूर से देखा, सोचा कि ऐसे लगता है कि ये तो गायों के लिए भी ठीक है और मनुष्यों के लिए भी कोई ना कोई काम अवश्य आएगा। तो आज मैं ऐसे करता हूँ कि इस ये थोड़ा सा घास ये काट के ले जाता हूँ और देखता हूँ बाजार में लोग लेते हैं कि नहीं लेते हैं। यदि लेते हैं तो अब मुझे स्थान तो पता चल गया, तो कल से मैं बड़ी मात्रा में इसको उठा के ले जाऊंगा। अब दैव से जिस समय ये व्यक्ति उस हरियाली के सामने, उस हरे भरे खेत के सामने जा रहा था, वो वास्तव में तुलसी थी, तो उसी समय दैव से उसके मृत्यु का समय बहुत करीब आया। यमदूत आ गए, यमदूत को तो ये नहीं देख पाए व्यक्ति, और यमदूतों ने एक पास में बैठे हुए कोबरा सांप से कहा कि जाओ जल्दी से डस लो इस व्यक्ति को, अरे जल्दी करो जल्दी करो, इससे पहले कि वो तुलसी का स्पर्श करे। एक बार उसने तुलसी का स्पर्श कर लिया फिर उसे डस लोगे तो वो हमारे हाथ से बाहर निकल जाएगा, हम उसको नहीं ले जा पाएंगे। तो सांप जल्दी जल्दी से आगे गया, लेकिन तब तक दैव था, उसने तुलसी को पकड़ लिया था हाथ में, काट लिया, काट रहा था वो। तो काटने के बाद उसे पता नहीं था ये क्या है, तुलसी है क्या है, इसका महत्व क्या है, महिमा क्या है, कुछ नहीं पता। तो काट लिया और काफी कुछ तुलसी के दल आदि सब एकत्र किए और अपने सर पे रख दिए, बांध लिया। और जैसे ही तुलसी का स्पर्श किया था और यमदूत पास में आए, तो तुरंत उस समय सुदर्शन चक्र भी भगवान का वहां आ गया। तो यमदूत दूर ही रह गए, भाई और पास में नहीं जाना है, तो दूर रह गए और सांप भी डस नहीं सका। फिर सांप ने क्या किया, वो तुलसी की जो घास था उसके अंदर जाके छुप गया। और फिर इसको पता कहा, कुछ में पता नहीं, इसने बांध दिया अपने सर के ऊपर रख दिया और आगे चल पड़ा गांव में कि चलो वापस गांव में जाएंगे, बेच के थोड़ा कुछ कमा लेंगे। अब देखिए परिस्थिति कैसी थी, ये व्यक्ति जा रहे हैं, एक ओर पीछे यमदूत पीछे चले आ रहे हैं, दूसरी ओर सुदर्शन चक्र पीछे पीछे आ रहे हैं, और ऊपर सांप। और ये व्यक्ति को पता ही नहीं कि यमदूत भी हैं, सुदर्शन चक्र भी है, सांप भी है, कुछ पता नहीं। वो अपनी दुनिया में मस्त वो चल रहा है आगे। चलते 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 यमदूत सोच रहे हैं ये कब सुदर्शन चक्र यहाँ है, तब तक हम कुछ कर नहीं सकते, हमारे कर्तव्य को हम नहीं निभा सकते। तो गांव के बाहर ही एक दूसरे वैष्णव ब्राह्मण रहा करता था। तो जैसे इस व्यक्ति ने, इस पतित ब्राह्मण ने जब उस वैष्णव ब्राह्मण को देखा तो उनके पास गया ये पूछने के लिए कि क्या आप ये खरीदना चाहते हैं। अब वो वैष्णव शुद्ध भक्त थे तो उन्होंने तुरंत देख लिया कि क्या चीज है। उन्होंने सुदर्शन चक्र देखा, यमदूतों को देखा, और ये भी समझ गए कि वहां एक सांप भी है। क्या परिस्थिति है, तुरंत समझ में आ गया कि ये व्यक्ति बच गया केवल तुलसी का स्पर्श करने मात्र से। तो उसने यमदूतों से कहा कि माननीय महोदय, कृपया इस ब्राह्मण को आप छोड़ दीजिए, आप रहने दीजिए, क्योंकि ये तुलसी महारानी मेरे लिए ला रहा था। तो यमदूतों ने कहा कि देखिए, ये हमारे बस की बात नहीं है, हम तो अपना कर्तव्य कर रहे हैं। अभी इस व्यक्ति के लिए केवल डेढ़ घंटा बचा है, अब डेढ़ घंटा जब समाप्त हो जाएगा, जैसे ही ये तुलसी को नीचे रखेगा और इसका स्पर्श नहीं रहेगा तुलसी से, तो वहाँ जो सांप है वो उसको डस लेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, इसकी आत्मा को हमें ले जाना पड़ेगा। एक ही उपाय इसके लिए है, यदि आप इसकी मृत्यु बचा से उस इसे मृत्यु से बचाना चाहते हो तो इस तुलसी को आप भगवान विष्णु के चरणों में अर्पण कर दो। फिर वो कहने लगे, यमदूत जो है तुलसी की महिमा का गान करने लगे और कहने लगे कि हमें पता नहीं कि तुलसी महारानी से कृष्ण इतना क्यों प्रेम करते हैं। जो व्यक्ति तुलसी का स्पर्श करता है ऐसे प्रतीत है कि मूर्तिमान संरक्षण उनके पास आ जाता है और हम पास में भी नहीं आ सकते, हम स्पर्श नहीं कर सकते ऐसे व्यक्ति को। तो जो व्यक्ति तुलसी की सेवा करता है उसे कृष्ण प्रेम मिल जाता है और हमारा कोई अधिकार नहीं होता है उस व्यक्ति के पास जाने के लिए। तो शीघ्र ही आप तुलसी दल यहाँ से जो ये ब्राह्मण लाया है आप अर्पण करो कृष्ण के चरणों में। तो फिर इस शुद्ध वैष्णव ब्राह्मण ने ऐसे ही किया और फिर भगवान प्रसन्न हुए। यमदूतों को वापस जाना पड़ा, सांप को भी वापस जाना पड़ा, सांप डस नहीं पाया उस व्यक्ति को। और फिर उस वैष्णव ब्राह्मण ने उस पतित ब्राह्मण के लिए उसे प्रचार किया, उसे भी अच्छा भक्त बना दिया। तुलसी महारानी की जय। इस तरह से तुलसी महारानी की सेवा करने से कितना लाभ है देखिए। वैसे तुलसी महारानी के पास में बैठ के जप आदि हम करते हैं, है ना, क्यों? क्योंकि तुलसी महारानी के पास में बैठने से एक आध्यात्मिक शक्ति हमें मिल जाती है। तुलसी महारानी हमें कृष्ण भक्ति प्रदान करने में सक्षम है। हम हर रोज सुबह क्या प्रार्थना कहते हैं, वृंदायाय तुलसी देव्याय प्रियायाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वृंदायाय तुलसी देव्याय, कि वृंदा देवी तुलसी महारानी, प्रियायाय केशवस्य च, केशव अर्थात श्री कृष्ण, वृंदा देवी या तुलसी महारानी श्री कृष्ण या केशव के लिए बहुत प्रिय हैं। विष्णु भक्ति प्रदे देवी, मुझे विष्णु भक्ति या कृष्ण भक्ति प्रदान कीजिए हे तुलसी महारानी, ये प्रार्थना हम रोज करते हैं। तो तुलसी महारानी के पास में बैठ के जप कीर्तन आदि करने से बहुत लाभ मिलता है। तुलसी महारानी के सानिध्य का महात्म्य ये है। चैतन्य भागवत में भी वर्णन है कि एक बार जब चैतन्य महाप्रभु तुलसी महारानी के पास में बैठ के जप कर रहे थे तो उन्होंने तुलसी महारानी की भूरी भूरी प्रशंसा की कि तुलसी महारानी के ऐसे गुण हैं कि इनका वर्णन नहीं किया जा सकता। केवल तुलसी महारानी के पास में बैठने से हमें भक्ति मिल सकती है। इसलिए प्रभुपाद जी ने एक नियम बनाया कि तुलसी पूजा रोज होनी चाहिए और तुलसी पूजा के बाद फिर सारे भक्त लोग इकट्ठे बैठकर जप करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का, और तुलसी महारानी वहां अवश्य रहती हैं। हरिदास ठाकुर ने भी वो भी ऐसे ही करते थे, अपनी कुटिया में बैठ के वो तुलसी महारानी के पास में बैठ के जप करते थे। 300,000 कृष्ण नामों का जप वो करते थे। और आपको तो पता ही है वो प्रसिद्ध कहानी, जबकि रामचंद्र खान नाम के एक दुष्ट व्यक्ति को ईर्ष्या हुई हरिदास ठाकुर के प्रति, उन्होंने चाहा कि इस साधु को हमें बदनाम करना चाहिए और इसका पतन कराना चाहिए, ये इस आदमी को इतनी प्रतिष्ठा क्यों मिल रही है, मैं यहाँ का बड़ा जमींदार हूँ, मैं प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ यहाँ का, तो ये साधु बीच में चले आए और इतने लोग यहाँ इनकी पूजा आदि करते हैं, तो ईर्ष्या के कारण उन्होंने सोचा कि हरिदास ठाकुर को बदनाम करना चाहिए, तो उन्होंने एक वेश्या को भेजा। लेकिन वेश्या को हरिदास ठाकुर ने कहा कि बैठो, मेरा जप समाप्त नहीं हुआ, तो वो भी तुलसी महारानी के पास बैठ गई रात भर और हरिदास ठाकुर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहे। ऐसे पूरे 3 दिन और 3 रात बीत गए। वो सुबह को चली जाती, रात को फिर से आती और फिर वही बात। तीसरे दिन के या रात के अंत में उस वेश्या का हृदय पूरी तरह से परिवर्तित हो गया और क्षमा याचना करने लगी और बताया कि मैं एक बहुत दुष्ट उद्देश्य से आपके पास आई थी। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि मुझे पता था तुम क्यों आई हो मेरे पास और किसने भेजा था तुम्हें, मैं तो उसी दिन चले जाता, परंतु तुम्हारा उद्धार करने के लिए ही मैं यहाँ पर रुक पड़ा। तो अब तुम्हारे पास जितना भी धन है सब दान में दे दो और यहाँ चले आओ। तो उस वेश्या का हृदय इतना परिवर्तित हो गया था कि उसने ऐसे ही किया और फिर वो वापस चली आई सादे कपड़े पहनकर। और फिर हरिदास ठाकुर ने कहा यहाँ तुलसी महारानी के पास में बैठना और निरंतर कृष्ण नाम का उच्चारण करना। और फिर उस वेश्या ने ऐसे ही किया और शीघ्र ही सारे गांव में ही नहीं, जितने भी आसपास के गांव के लोग थे वो सब इस महान वैष्णवी का दर्शन करने चले आए कि कैसे इसका परिवर्तन हो गया, वो क्या थी और अब क्या है। तो इससे हमें पता चल सकता है कि वैष्णव, कृष्ण नाम और तुलसी, इन तीनों की कृपा हमारे जीवन में चाहिए, फिर हमारा जीवन सफल हो सकता है। उसी प्रकार से नारद मुनि और मृगारी की कथा भी आपने सुनी होगी कि नारद मुनि जब एक बार जंगल से जा रहे थे तो वहाँ पे एक शिकारी था। वो शिकारी बड़ा क्रूर था, आधा मार डालता था पशुओं को। तो नारद मुनि ने देखा कि ऐसे तड़पा तड़पा के व्यक्ति क्यों मार रहा है इन पशुओं को। उन्होंने उस शिकारी से पूछा, भाई मारना ही है, पहली बात तो ये है कि मारना बड़ा पाप है, ऐसे नहीं मारना, और मारना ही यदि है तो एकदम से क्यों नहीं मार डालते, इस तरह से तड़पा तड़पा के उनको मार रहे हो, ये तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। तो उसने कहा कि मैंने मेरे पिता को ऐसे ही शिकार करते हुए देखा, इसलिए मैं कर रहा हूँ। फिर नारद मुनि ने अच्छे उपदेश दिए और उपदेश देने के बाद उसका हृदय परिवर्तित हो गया। उसने कहा कि तुम यदि सुधरना चाहते हो तो ये कार्य करना बंद करो। तो शिकारी ने कहा कि फिर मेरे भोजन का क्या होगा, मैं परिवार का देखभाल कैसे कर सकता हूँ, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, तुम चिंता नहीं करना, लेकिन जो भी तुम्हारे पास है सब दे के आओ। मृगारी उसने श्रद्धा रखी नारद मुनि की बातों पर, सब कुछ अपना दान में दे दिया और चले आया। ये उसका महान गुण था, शरणागति से ये लाभ होता है। हमें जब कुछ करना है तो हृदय से करना चाहिए, नहीं तो मजा नहीं है, है ना। यदि कृष्ण भक्ति करनी है तो बड़े दिल लगा के हृदय से करना चाहिए, हृदय पूर्वक नहीं करेंगे तो क्या लाभ। न हम फिर भोग कर पाएंगे और न हम भक्ति ठीक से कर पाएंगे, न इधर के न उधर के रह गए। जो भोग कर रहे हैं वो अपने दुनिया में मस्त हैं, जो भक्ति कर रहे हैं वो अपनी दुनिया में मस्त हैं, और बेचारा जो बीच में रहता है ना वो इधर का ना उधर का। तो पूरे हृदय से हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सबको सब कुछ दे देना है दान में और चले आना है मंदिर में। कहने का तात्पर्य ये है कि हृदय से भगवान के शरण में आना चाहिए, जैसे मृगारी ने किया। फिर कितनी कृपा मिलेगी। मृगारी वहां पर आए और उन्होंने, नारद मुनि ने कहा यहाँ तुलसी का बीज बो दो और तुलसी के सेवा करना, रोज तुलसी पे जल अर्पण करना, तुलसी की आरती उतारना, तुलसी के पास में बैठ के भगवान कृष्ण के पवित्र नामों का उच्चारण करना। और मृगारी ने ऐसे ही किया और शीघ्र ही उनका नाम इतना फैल गया सब जगह। आसपास के लोग आके इतना प्रसाद उस व्यक्ति को देते थे कि उसे वहां फूड फॉर लाइफ करना पड़ा है, प्रसाद का वितरण करना पड़ा है। अनेक लोगों के लिए तो कोई जीविका के लिए कोई समस्या आई ही नहीं। जब हम भगवान कृष्ण के शरण में जाते हैं तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, हमारे भरण पोषण की समस्याएं वो सब देख लेंगे, वो भगवान का विभाग हो जाता है। इस तरह से तुलसी महारानी की सेवा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने तो की, भगवान कृष्ण ने भी तुलसी की सेवा की। जब श्री राम वनवास में गए थे सरयू के तट पर, उन्होंने तुलसी की पूजा की शक्ति पाने के लिए, असुरों का संहार करने के लिए। बाद में दंडकारण्य में भी श्री राम ने सीता देवी और लक्ष्मण के साथ में तुलसी की पूजा की, ऐसे वर्णन रामायण में आता है। साथ साथ में सीता देवी ने भी अशोक वाटिका में, लंका में तुलसी देवी की पूजा की। सुग्रीव ने ऋषिमूक पर्वत पे तुलसी देवी की पूजा की ताकि वो ऐसी शक्ति पाए जिससे कि वो अपने बड़े भाई वाली को हरा दे, क्योंकि वाली ने सुग्रीव को राजपद से हटा दिया था। और फिर हनुमान जी ने भी तुलसी को प्रणाम किया, तुलसी की सेवा की समुद्र पार करने के पहले। जब वो लंका कूद कर चले गए थे उसके पहले हनुमान जी ने तुलसी की कृपा याचना की। वैसे तुलसी महारानी के कई नाम हैं। एक श्लोक है जिसमें तुलसी महारानी के पवित्र नामों का उल्लेख कहा जाता है कि भगवान कृष्ण स्वयं ये मंत्र कहते हैं जिसमें तुलसी महारानी के अलग अलग नाम हैं। कृष्ण जीवनी नंदिनी पुष्पा सारा तुलसी विश्व पावनी विश्व पूजिता वृंदा वृंदावनी। ये सब तुलसी महारानी के अलग अलग नाम हैं। कृष्ण जीवनी, कृष्ण के प्राण, कृष्ण का जीवन तुलसी महारानी है। नंदिनी, नंदिनी का मतलब है कि जो भक्तों को श्रद्धा और भक्ति या आनंद प्रदान करती हैं, नंदिनी। पुष्प सारा, सारे पुष्पों का सार तुलसी है। देखिए वैकुंठ लोकों में ऐसे दिव्य पुष्प हैं जैसे पुन्नाग, बकुल, चंपा और पारिजात इत्यादि। बहुत सुगंधित फूल हैं ये, सुंदर दिखने में, सुंदर सुगंध में भी अति श्रेष्ठ। फिर भी भगवान कृष्ण इनको इतना पसंद नहीं करते जितना कि तुलसी को करते हैं। इसलिए सारे जो पुष्प हैं वैकुंठ लोकों में वो तुलसी महारानी की पूजा करती हैं और उनका गुणगान करते हैं। तो सारे पुष्पों का सार है तुलसी। हमारे पास फूलों का बगीचा क्यों ना हो, लेकिन उसमें तुलसी नहीं हो तो कृष्ण के लिए ये बड़ी प्रसन्नता की बात नहीं होती है। इसलिए तुलसी महारानी का एक नाम है पुष्प सारा और है तुलसी। तुलसी का मतलब क्या है आप जानते हैं? तुलसी शब्द का हाँ तुलना करते हैं, तुलना शब्द सही है लेकिन और क्या है इसका? जिनकी तुलना नहीं की जा सकती, जो अतुलनीय हैं, वो है तुलसी। तो ये है शब्द तुलसी, अर्थ है शब्द तुलसी शब्द का। फिर नाम है विश्व पावनी, सारे विश्व को पावन कर सकती हैं। विश्व पूजिता, जो सारे विश्व द्वारा पूजित हैं। वृंदा, वृंदा का क्या मतलब है? हाँ वृंदावन ठीक है, लेकिन वृंदावन ये शब्द कैसे आया? वो वृंदा का वन है। वृंदा वृंद, वृंद का क्या मतलब? भक्त वृंद, इकट्ठा, झुंड, इकट्ठा होना। तो आप देखेंगे कि तुलसी जब दल आते होते हैं इकट्ठे होते हैं सब, इसलिए तुलसी वृंदावन कहते हैं उसको। तो वृंदा एक नाम है और वृंदावनी, वृंदावनी क्योंकि वो वृंदावन में आई। वृंदावन बल्कि वृंदा देवी या तुलसी महारानी के पीछे रखा गया है ना नाम। तो अनेक वर्ष पूर्व वो वृंदावन में आई और तब से वहीं रहती हैं, इसलिए उनका नाम है वृंदावनी। और दो श्लोक हम पाए जो हम पढ़ के सुनाना चाहते हैं तुलसी महारानी की महिमा के बारे में। यद गृहे तुलसी भाति रक्ष भीर जलसेचनैहि तद गृहं यमदूतश्च दूरतो वर्जयन्ति। इसका मतलब क्या है? यद गृहे तुलसी भाति रक्षभीर, जिस घर में अच्छी तरह से तुलसी देवी की रक्षा होती है और जलसेचनैहि, जिसमें जल अर्पण किया जाता है तुलसी महारानी को, तद गृहं उस घर में यमदूतश्च, जो यमदूत हैं, दूर तो वर्जयंती ही, दूर से ही उस घर को त्याग देते हैं। है ना? तो यमदूत पास में भी नहीं, अरे बाप रे वहां पे तुलसी है, चलो चलो दूर चले जाओ। अच्छा श्लोक है ना। और एक श्लोक है तुलसी अलंकृत ये तुलसी नाम जपकः तुलसी वन पालये ते त्यज्य दुरातुभातः। कि यमराज अपने यमदूतों से कहते हैं कि देखो सावधान रहना, तुम अपने कार्य अवश्य करना, पापी लोगों को पकड़ लेना और मेरे पास ले आना, लेकिन तुलसी अलंकृत ये जिनके गले में तुलसी की माला है, तुलसी नाम जपकः जो तुलसी के नाम का जप करते हैं, तुलसी वन पालये जो तुलसी वन या तुलसी वृंदावन तुलसी का पालन करते हैं, तो ऐसे लोगों के पास में भी नहीं जाना गलती से। तो केवल यमदूतों से बचना इतना हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है, है ना। एक कहानी हमें याद आ रही है कि एक शिल्पकार था, वो मूर्तियां वगैरह बनाता था, तुलसी से संबंधित नहीं है फिर भी याद आया तो बता रहे हैं। और वो मरना नहीं चाहता था बेचारा, अब क्या करे, सबको मरना तो पड़ेगा। लेकिन उसने, वो ज्योतिष शास्त्र बहुत अच्छी तरह से जानता था, तो उसने क्या किया, अपने मृत्यु का जो सही समय है उसको ढूंढ लिया कि इस दिन पर इस घड़ी पर मेरी मृत्यु होने वाली है, तो मैं उसको टाल लूंगा। कैसे टाल लूंगा? मैं यमराज को भ्रमित कर दूंगा। तो शिल्पकार था तो अपने जैसे ही उसने अनेक मूर्तियां बनाई, बिल्कुल उसके जैसे दिखने, वो सब ऐसे बैठे हुए एक मुद्रा में ऐसे, और वो भी उनके साथ में बैठ गया उसी घड़ी पर, है ना। तो यमराज आए और देखा, अरे ये क्या है, किसको ले जाना है मुझे, ये भी सब एक जैसे दिखते हैं। तो उन्होंने देखा फोटो वोटो, हाँ ये तो सब ठीक है, ये ऐसे ही दिखते हैं, मूर्ति कौन सी है, असली आदमी कौन सा है, तो क्या करें। तो यमराज सोच रहे, वो आदमी ऐसे बैठा था, वो सोच रहा था कि अभी शायद यमराज यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन यमराज जो बड़े बुद्धिमान है ना, तो यमराज ने सोचा कि यहाँ इस पृथ्वी के लोगों को एक चीज पसंद नहीं है, उनकी यदि निंदा की जाए तो भड़क जाते हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए। हाँ, उसने कहा अरे ये मूर्तियां किसने बनाई, इतनी बेकार हैं। तो ऐसे बोलते गया यमराज, बोलते गए तो आदमी को सहन नहीं हुआ, क्या मतलब, तो पता चल गया, पकड़ा गया उसे। तो यमराज ने फिर पकड़ लिया, ले गए, चलो भाई आना है, समय हो गया, बच नहीं पाया। तो केवल यमदूतों से बचना इतना कर्तव्य नहीं है हमारा, हमारा उद्देश्य है कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना, और तुलसी महारानी की कृपा मिलेंगी उनकी सेवा के माध्यम से, तो अवश्य कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हमारे लिए सुलभ हो जाएगी। और जिस व्यक्ति को कृष्ण प्रेम मिलेगा, यमदूत तो आएंगे ही नहीं उसके पास, और वो निश्चित ही गोलोक वृंदावन चले जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो कोई प्रश्न है आपके? हाँ जी, तो माइक है।
हरे कृष्ण, आपने बताया कि तुलसी धारण करने से हिंदुत्व नहीं बचते, आजकल के फैशनेबल लोग ऐसे हैं ना जो बाहर बहुत से लफड़े करते हैं, गंदे गंदे चीजें करते हैं, और फैशन बोल के शो बोल के कंठी माला धारण, तुलसी माला धारण करते, उनका क्या होगा?
अभी ऐसे बताया जाता है कि केवल तुलसी के स्पर्श मात्र से व्यक्ति अनेक पापों से मुक्त हो जाता है, इसलिए शव के ऊपर भी तुलसी का पौधा भी रखा जाता है ना, जब स्मशान भूमि में ऐसे होता है। लेकिन फिर भी इस दृष्टि से हमें नहीं करना चाहिए। वो जो ब्राह्मण था, पतित ब्राह्मण, उसने क्या किया, उसको ज्ञान नहीं था कि ये तुलसी है। जैसे हम नाम अपराध होता है ना हमारा, जब हम जानबूझ के पाप करते हैं ताकि फिर हम नाम लेंगे, फिर पाप मिट जाएगा, फिर पाप करेंगे, तो ये एक अपराध होता है ना, तो भगवान प्रसन्न नहीं होते, इसका विपरीत ही कोई परिणाम होता है। तो ठीक उसी प्रकार से जब अजामिल ने उल्टा किया, अजामिल का नामाभास था, निस्सहाय भाव से उसने भगवान के नाम को पुकारा, यद्यपि वो अपने पुत्र को ही पुकार रहा था, तो ठीक उसी प्रकार से तुलसी महारानी के लिए भी कोई जानबूझकर ऐसे करता है कि तुलसी का स्पर्श हम करेंगे और पाप करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे, तो वो अपराध हो जाएगा तुलसी के प्रति। इसलिए ये अच्छा है कि जो लोग नियमों का पालन नहीं करते हैं उनको तुलसी की माला नहीं पहननी चाहिए। ऐसे भी बताया जाता है कि जिस कंठ में अभक्ष चीज है, मतलब जो मांस आदि है वो जाता है, यहाँ तक कि प्याज लहसुन आदि है, तो उस कंठ में तुलसी माला नहीं होनी चाहिए। ये अच्छा है, इससे भला ये है कि वो व्यक्ति कृष्ण का नाम लेने लगे, धीरे धीरे से वो शुद्ध हो जाएगा, फिर कंठी माला पहन ले। ठीक है। हाँ,
हरे कृष्ण महाराज, आपने बहुत अच्छा बताया तुलसी बारे, तुलसी के बारे में। मेरा एक प्रश्न है कि 12 महाजन जो भक्त है, श्रेष्ठ भक्त है,
हाँ,
तो तुलसी महाराज ने उन 12 महाजन के लेवल में क्यों नहीं आया?
नहीं देखिए, तुलसी महारानी तो भगवान के वैकुंठ धाम में और गोलोक वृंदावन में रहती हैं, वो वहां से यहाँ आई हैं, और ये जो बाहर 12 महाजनों की बात है वो उनकी है जो यहाँ के हैं। तुलसी महारानी तो यहाँ की नहीं है, वो तो वहां से आई हैं, खास करके हम सब के ऊपर कृपा करने के लिए। ठीक है, और कोई प्रश्न?
कृष्ण भगवान को तुलसी महारानी इतना प्रिय,
अभी वो हमें नहीं पता अभी। अब भगवान तुलसी ही क्यों पसंद करते हैं और बकुल क्यों नहीं, चंपा क्यों नहीं, अब वो हमें नहीं पता। बस भगवान को पसंद है, भगवान ने ही ऐसे किया है। जब हम पूछते हैं भगवान को गाय ही क्यों प्रिय है और दूसरा कोई पशु क्यों नहीं, बस ऐसे है ना। भगवान ने ऐसे बनाया है सृष्टि, बस उसका पालन हम करते हैं। हाँ जी, हरे कृष्ण।
महाराज, जन्म और मृत्यु ये हमारे कर्मों से निर्धारित रहता है। तो जैसे आपने बताया एक उदाहरण में कि ब्राह्मण ने तुलसी दिया था तो उससे उसकी मृत्यु टल गई, तो इसका क्या हम अर्थ निकाल सकते हैं?
वो भी उसके कर्म में था। जैसे यदि किसी के कर्म में ऐसे लिखा है कि उसका अपघात होना है, एक्सीडेंट होना है, वो उसके भाग्य में लिखा है, लेकिन ऐन वक्त पर कोई आके उसको बचाए तो ये भी उसके भाग्य में लिखा है ना। एक पाप करने का फल है, दूसरा पुण्य करने का फल है, और साधारण व्यक्ति में पाप पुण्य दोनों कार्य करते हैं, परंतु एक ऐसी चीज उस ब्राह्मण के पतित ब्राह्मण के जीवन में हुई जो पाप और पुण्य के परे हैं, वो क्या है? वैष्णव की कृपा उसको मिल गई, इसलिए बेड़ा पार हो गया।
हरे
कृष्ण, हरे कृष्ण।
हम देखते हैं कि बहुत सारे घरों में तुलसी का पूजन होता है, तुलसी का जल डालते हैं, लेकिन वो कृष्ण के भक्त नहीं है, तो उनको अज्ञान सुख नहीं होते उससे?
हाँ, वो पुण्य कार्य हो जाता है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि भारत में ये संस्कृति है, ये सभ्यता है कि हर एक घर में भले वो वैष्णव हो या न हो, वो तुलसी की सेवा अवश्य करते हैं, इससे पुण्य प्राप्त होता है। परंतु जब हम तुलसी का संबंध कृष्ण से देखते हैं और कृष्ण की सेवा में तुलसी का प्रयोग करते हैं तो वो भक्ति हो जाता है। तो कृष्ण का संबंध नहीं रहता तो तुलसी की सेवा पुण्य कहलाती है। ठीक है, और कोई प्रश्न? हाँ, कहाँ से आवाज आ रही? हाँ, हाथ।
हाँ,
हाँ हाँ, लगा सकते हैं, वो तो बलराम है ना, विष्णु तत्व को लगाते हैं, विष्णु तत्व को छोड़कर नहीं लगाते हैं। ठीक है,
अरे
तुलसी मंजरी वगैरह के लिए नियम अनेक होते हैं। आप में से जो पुजारी सेवा करते हैं आप जानते हैं कि दल आदि तोड़ने के पहले मंत्र, क्षमा मंत्र का उच्चारण करना होता है। हम तुलसी महारानी से क्षमा याचना करते हैं कि आपको हम कष्ट पहुंचा रहे हैं, हम आपके दल तोड़ रहे हैं, आपकी मंजरियां हम निकाल रहे हैं, तो इस भावना से हम तुलसी महारानी के पास जाके निकालते हैं तो फिर ठीक है। यदि हम ऐसे नहीं करेंगे तो कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल कैसे करेंगे? तोड़ना तो पड़ेगा, नहीं तो हम तुलसी दल भोग में कैसे डाल सकते हैं या चरण कमलों में भगवान के कैसे अर्पण कर सकते हैं? ठीक है
प्रभु जी, जैसे हम अगर पूरी सेवा करें, तुलसी माला पहने, सब कुछ करें भगवान के अनुसार, फिर भी हमारी आयु क्यों 100 ईयर्स के ऊपर नहीं हो सकती है?
देखिए, ये बड़ा सौभाग्य है तुलसी महारानी की सेवा करके कि 100 साल की आयु नहीं होगी, है ना। आजकल कलयुग में बूढ़ा होना बहुत मुश्किल है, है ना। इतनी कठिनाई है कि 100 साल जीते जीते आदमी को बहुत कष्ट सहन करना पड़ता है। तो 100 साल क्यों जीना है, इसके पहले हम गोलोक वृंदावन चले जाएं तो अच्छा है ना। हाँ, और कोई प्रश्न, माइक यहाँ पे दीजिए जरा। हरे कृष्ण। तुलसी विवाह, हाँ ये तो एक पौराणिक कथा भी है और प्रथा है। शालग्राम से तुलसी महारानी का विवाह होता है। हम कर तो सकते हैं, परंतु हमारे परंपरा में, हमारे संप्रदाय में इस विवाह को इतना महत्व नहीं दिया जाता। हम लोग ऐसे विशेष करके तुलसी विवाह के अनुष्ठान को नहीं मनाते हैं। हालांकि करने से भी कोई गलती नहीं है, लेकिन हम लोग नहीं करते। हम तो तुलसी की सेवा ही करते हैं, तुलसी के दल और मंजरी आदि कृष्ण के चरणों में हम अर्पण करते हैं। लेकिन हाँ, यह है पौराणिक कथा, तो बहुत लंबी है। उसके लिए और एक क्लास लग जाएगा। लेकिन ये तो एक निमित्त मात्र है। ये जितने भी पौराणिक कथाएं हैं, जैसे तुलसी महारानी है आई हैं, एक निमित्त है तुलसी महारानी को यहाँ भौतिक सृष्टि में, धरातल में प्रकट होने के लिए। ठीक है। हाँ जी, पीछे कोई माइक दीजिएगा। कहाँ से? हाँ जी,
तुलसी पत्र को जब हम प्रसाद में रखते हैं, तो प्रसाद में लेने के बाद उनको कैसे ग्रहण करना चाहिए तुलसी पत्र को, इसके बारे में जरा बताएं, क्योंकि दाग लगाना नहीं है।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तुलसी को भी आपको चबा के ही खाना है, जैसे आप प्रसाद को चबा के खाते हैं। प्रसाद भी तो कृष्ण ही है ना। जब आप भोग भगवान को अर्पण करते हो तो वो महाप्रसाद बन जाता है, और जब महाप्रसाद बन जाता है तो वो भगवान से अभिन्न है, सही है ना। तो महाप्रसाद जब ग्रहण करते हैं तो चबा के ही खाते हैं ना। तो उसी प्रकार से तुलसी जो अर्पण की गई है वो भी हम ग्रहण कर सकते हैं। हाँ जी, अंतिम एक दो प्रश्न। हाँ जी,
भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण को क्रमशः लक्ष्मी जी, राधा रानी और तुलसी जी, तीनों अत्यधिक प्रिय हैं। तो तीनों में तो एक प्रेम पाने का एक प्रतिस्पर्धा भी होता होगा, तो इन तीनों में सबसे नजदीक कौन है, भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु?
राधा रानी, लक्ष्मी और तुलसी में, ये प्रश्न है। देखिए, लक्ष्मी देवी तो राधा रानी की विस्तार हैं, ठीक है। लक्ष्मी देवी तो रासलीला में प्रवेश नहीं कर पाई, ठीक है। लेकिन तुलसी, वो तो गोलोक वृंदावन में अवश्य हैं। तुलसी कौन है गोलोक वृंदावन में? तुलसी महारानी कहाँ से आती हैं? वृंदा देवी। वृंदा देवी कौन है? वो भी श्रीमती राधा रानी की ही विस्तार हैं। और क्या करती हैं वो, उनकी सेवा क्या है? राधा कृष्ण की लीलाओं में सहायता करती हैं। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी।
हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण।
कुछ लोगों का कहना है कि रविवार और द्वादशी के दिन तुलसी तली तोड़े, ये सही है?
हाँ, ऐसे नियम हैं। द्वादशी के दिन दल नहीं तोड़ना इत्यादि, ऐसे थोड़े बहुत नियम हैं। और जो पुजारी हैं उनको ये सब नियम पता होने चाहिए, ऐसे बताया जाता है। हाँ जी,
कृष्ण माता जी,
हमको माता जी बना दिया। हाँ जी, हाँ जी।
आपने शुरुआत में बताया था कि तुलसी पत्र जो है श्रीमती राधा रानी को भी अर्पण नहीं कर सकते
जी,
लेकिन कहा जाता है कि श्रीमती राधा रानी जो है स्वयं कृष्ण है,
स्वयं कृष्ण नहीं, वो स्वयं कृष्ण हैं भी और नहीं भी, वो कृष्ण की शक्ति हैं, भगवान कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है। ठीक है, शक्ति और शक्तिमान में अंतर है भी और नहीं भी। ठीक है, अंतिम प्रश्न, एक आखिरी प्रश्न है पीछे।
हरे कृष्ण। मैं बोलना चाहता हूँ, जो लोग आत्महत्या करते हैं उनसे बातें किस प्रकार होती
है? ये विषय कुछ हटके हो गया, तुलसी के बारे में कुछ प्रश्न है ना, अभी तुलसी का विषय है। सही, वो अनेक नियम है, एकादशी को हो सकता है। हाँ जी, अंतिम प्रश्न।
हरे कृष्ण प्रभु।
हरे कृष्ण
प्रभु जी, मेरे को पूछना था कि तुलसी जैसे घरों में लगाते हैं सब वैष्णव क्लास के भक्त लोग, भक्तों को जो भी अभी जैसे सर्दी कुछ काम हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो पानी में तुलसी उबाल के उसका जूस को निकाल के फटा बना के पीते हैं, तो क्या ये उचित है?
नहीं, उचित नहीं है। नहीं करना चाहिए, दूसरे उपाय हैं, औषधियां हैं, उनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक है, तुलसी महारानी की जय, वृंदा देवी की जय, श्री श्री राधा रास बिहारी जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्णा।
अनुरोध करेंगे कभी कभी आके हम लोग को ऐसा कथा सुनाए को मदद कर सके। श्री महाराज का अंतिम बार स्वागत करेंगे। स्वामी महाराज।